मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं पढ़े हुए का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए इस पर कुछ बातें आप सबसे करूंगा और इसकी शुरुआत ही मैं कुछ न्यूज़ आइटम से करना चाहूंगा। मैं दो न्यूज़ आइटम की आज आप सबसे चर्चा करने जा रहा हूं और इनफैक्ट अगर सामान्य रूप में आप इन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, ये कोई खास खबर नहीं है, इसे हम क्यों पढ़ें और अगर हम पढ़ भी लेंगे तो इसका करेंगे क्या। और सामान्य तौर पर ऐसे न्यूज़ को स्टूडेंट छोड़ भी देते हैं और मैं भी ये नहीं कहूंगा कि नहीं आप पकड़ करके रखिए, नॉट एट ऑल, कितनों को पकड़ करके रखेंगे। लेकिन जब हम इस तरह की खबरें पढ़ते हैं जिनकी मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूं तो ये हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं दर्ज हो जाती हैं क्योंकि ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग किस्म की खबरें होती हैं। इसमें से एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की है। अब सवाल यह है कि ये छोटी सी खबर है, इंटरेस्टिंग किस्म की खबर है, तो क्या ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काम की है, ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए कि कल मुझे जितने मेल मिले हैं मैं आपको बता नहीं सकता, इससे ठीक पहले मेल्स की जो संख्या थी उससे डबल मेल, दुगने मेल्स मुझे मिले हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं। उनका एक ही स्वर है, स्वर एक ही है कि हमें लग रहा था कि हम लिख लेंगे, हमने लिखने की शुरुआत की लेकिन आगे जाकर के बिल्कुल हम अटक गए, एक दो पॉइंट से ज्यादा सोच ही नहीं पाए और इससे हमें बड़ी निराशा हुई। सवाल यह है कि यह हो क्यों रहा है, क्योंकि कारण जानना बहुत जरूरी है, यह एक बीमारी है तो इस बीमारी का हल क्या है। तो दोस्तों, हल के रूप में ही मैं छोटी सी बात आज आप सबसे शेयर करने जा रहा हूं। आपने पढ़ा है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल अनजान विषय पर आपको लिखने के लिए कह दिया गया है। हाँ, हो सकता है कि निबंध जैसे विषयों को आपने इस रूप में कहीं नहीं पढ़ा हो लेकिन टुकड़े टुकड़े में तो आपने पढ़ा है, खूब पढ़ा है, जानते हैं आप। हम लोग आगे चल करके इन प्रश्नों पर बात करेंगे, जो भी जनरल स्टडीज के चार पेपर्स हैं और निबंध है, इन पर आगे चल करके हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। तो जब आपने पढ़ा है तो फिर आप इस पर लिख क्यों नहीं पा रहे हैं, एक संकट है ना। यहां मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से भी विशेष रूप से कहना चाहूंगा और उन्हें सजेस्ट भी करना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, आप लोगों को आंसर राइटिंग पर अलग से लेक्चर दिया गया है, पूरा सिस्टम बताया गया है बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही छोटे छोटे बिंदुओं के साथ। जिनकी भी ये समस्या है प्लीज आप एक बार फिर से आंसर राइटिंग के बारे में जो बातें बताई गई हैं सुने, ध्यान से सुने और इसके बाद फिर क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं, दोनों तरीके से दिए गए हैं, रिटेन फॉर्म में भी दिए गए हैं कि उसका आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए ताकि आपको पूरा स्ट्रक्चर पता लग जाए, और इसके बाद उस पर मेरी कमेंट्री भी है। क्या ऐसा नहीं है, कमेंट्री को ध्यान से सुनिए, वो कमेंट्री पूरी तरह से उसके आंसर राइटिंग पर ही है कि जब आपने इस प्रश्न को पढ़ा तो समझने में कहां कहां दिक्कतें आई, जब आपने लिखना शुरू किया तब कहां कहां दिक्कतें आई, कहां कहां आप भटक रहे थे, कैसे आप अपने भटकाव को रोकेंगे, फिर कहां कैसे कैसे आप पॉइंट्स लेकर के आएंगे, फिर कैसे उसके स्ट्रक्चरिंग करेंगे यानी कि उसका ढांचा बनाएंगे और तब ये आंसर तैयार हो जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में हर आंसर के साथ कमेंट्री दी है, उन्हें ध्यान से सुने, प्लीज अंडरलाइन में कर रहा हूं, ध्यान से सुने, ये नहीं कि पढ़ करके सुन करके और बात खत्म कर दी, कई कई बार सुनिए, तब वो बातें आपके अंतर मन में जाकर के बैठेंगी और वहां से एक गुदगुदाहट सी पैदा होगी, एक उत्तेजना सी पैदा होगी, तब आपका दिमाग कुछ लेकर आएगा, अदरवाइज केवल सुनने से बात नहीं बनेगी। प्लीज इसे निश्चित रूप से करें। जहां तक ऐसे की बात है अपने ऑनलाइन क्लासेज स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली इस पर तो हम लोग फिर बात करेंगे और यहां तक कि जो हमारे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट नहीं है उनके साथ भी मैं डेफिनेटली इन बातों को शेयर करूंगा, खासकर ऐसे को लेकर। खैर, तो दोस्तों जो दो खबरें हैं, एक इसमें से तो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है और आप लोगों ने कल और परसों के अखबारों में भी इसकी थोड़ी सी झलक देखी होगी, आज के अखबारों में भी साफ तौर पर लिखा गया है कि हमारे ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, तो दोस्तों अभी कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन के दौरान उन्होंने एक शराब पार्टी में भाग लिया, अपनी शराब की पार्टी ऑर्गेनाइज की। अब आप देखिए कि एक छोटी सी बात है शराब की पार्टी और ब्रिटेन जैसे देश के लिए, यूरोप के लिए कोई बहुत असंभव सी बात नहीं है, कोई रेयर बात नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसा किया जबकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ कि कोई किसी से नहीं मिल रहा है क्योंकि कोरोना फैलेगा, लॉकडाउन है, मनाही है एक दूसरे से मिलने की। वहां पार्टी कर रहे हैं, बात शराब की नहीं है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। वहां पार्टी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यानी कि आपने जो कानून बनाया है, जो नियम घोषित किया है, आप खुद उसके विरुद्ध जा रहे हैं। तो इसको लेकर के जब यह बात बाहर आई तो उनसे इस्तीफे की मांग की जाने लगी और अब बात इतनी बढ़ गई है कि लगभग लगभग यह माना जा रहा है कि उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ सकता है। अब एक घटना है, छोटी सी घटना है लेकिन इंटरेस्टिंग घटना है। क्या आपकी किसी काम की है? क्या इसका कुछ उपयोग किया जा सकता है? आपको नहीं लगता कि यह फोर्थ पेपर के लिए कितनी अच्छी घटना है? फोर्थ पेपर जिसे हम एथिक्स की बात करते हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल लीडर्स से अपेक्षाओं की बात करते हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, क्योंकि वो हमारे आइडियल्स होते हैं, वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे प्रतिनिधित्व करने का मतलब ये नहीं कि हमारे लिए कानून बनाते हैं, हमारे प्रतिनिधित्व करने का मतलब है कि वो दुनिया के सामने, देश के सामने हमारे व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करते हैं। छोटी सी बात नहीं है और हम उनके आदर्शों का पालन करते हैं। फोर्थ पेपर यही तो है। तो आप देखिए कि ब्रिटेन जैसे देश में इसकी कितनी ज्यादा जरूरत महसूस की जाती है कि यह हुआ तो आप इस्तीफा दीजिए। और हमारे यहां पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं, आप देखिए कि किस तरह की घटनाओं में उनके नाम आते हैं, यहां तक कि उनको अपराधी भी ठहरा दिया जाता है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। समझ में आया कि ये जो पढ़ा हुआ एक छोटा सा आइटम है, इसका किस तरीके से आप उपयोग अपने एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। एक बात मैं आपको एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं दैनिक भास्कर का। इसमें है कि किसी भी समझौते से पहले सारी आशंकाएं दूर होनी चाहिए, इसका शीर्षक है। और अगर शीर्षक के आधार पर आप डिसीजन लेंगे कि मुझे ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप इसे किनारे कर देंगे, लेकिन जब अंदर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं नहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट आइटम है। इसका कुल मिलाकर के जो दारोमदार है, या कह लीजिए कि केंद्रीय बिंदु है, कहना चाहिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया अब द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता करने जा रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए अगर आप इस आइटम को पढ़ रहे हैं तो, कि ये जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी है RCEP, ये क्या है? अगर आप इसको जाने बिना ही इसको पढ़ करके निपटा देंगे तो बात नहीं बनेगी। आप जाइए गूगल पर, थोड़ा सा समय लगाइए और देखिए कि भी ये समझौता है क्या, ठीक है? और ये पिछले साल बहुत चर्चित रहा है, 2 साल पहले, क्योंकि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था और उस समय बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, भारत को इसमें शामिल होना चाहिए। खैर चलिए, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया इस पर अब बात करने जा रहे हैं, एक एग्रीमेंट होने जा रहा है, एक अंतरिम एग्रीमेंट ऐसा माना जा रहा है। उसके बाद होगा ये कि दोनों देशों के बीच जो आयात निर्यात है वो काफी कुछ फ्री हो जाएगा, उस पर जो टैक्सेस लगते हैं वो बहुत कम हो जाएगा, नहीं के बराबर हो जाएगा। मतलब आप यूं कह लीजिए कि निर्द्वंद व्यापार होने लगेगा, सामान्य तौर पर समझाने के लिए। जो ऑस्ट्रेलिया है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया दुग्ध उत्पादन के मामले में गजब का देश है। जैसे उधर आप डेनमार्क वगैरह देखते हैं ना, जो हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया की भी स्थिति लगभग लगभग वही है। वहां कितना दूध होता है, कैसे होता है, भगवान जाने, लेकिन इतना सस्ता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो किसान इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर ये समझौता हो गया तो ऑस्ट्रेलिया से दूध आने लगेगा, और अगर वहां से दूध आने लगेगा तो वो इतना सस्ता होगा कि हमारे देश के जो दुग्ध उत्पादक हैं उनका क्या होगा। और इसमें एक डेटा दिया हुआ है, अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आप उसे मिस कर जाएंगे। और वो डेटा है कि भारत में जो 7 करोड़ जो किसान परिवार हैं, 7 करोड़ किसान परिवार, याद रखिए, 7 करोड़ किसान नहीं, किसान परिवार, ये शब्द आपको मालूम होना चाहिए। एक परिवार में आप 5 लोगों को रख लीजिए टोटल, तो 35 करोड़ लोगों की आजीविका डेयरी उद्योग से जुड़ी हुई है। और हम जब ये कहते हैं कि हम अपने किसानों की आय में वृद्धि करना चाह रहे हैं तो उसमें डेयरी उद्योग का बहुत बड़ा रोल है। तो जब वहां से अगर सस्ता दूध आने लगेगा तो हमारे इस डेयरी उद्योग का क्या होगा, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि हमारे यहां तो दूध इतना उत्पादन हो रहा है कि बाहर से आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन आप इस पर विचार कीजिए कि सरकार कह रहे कि हमारे यहां तो इतना ज्यादा दूध हो रहा है, ऑलरेडी दूध हो रहा है, तो बाहर से कैसे आएगा, क्यों आएगा। लेकिन क्या सरकार का यह तर्क सही है या गलत है, इस पर आप थोड़ा सा विचार कीजिए। बाहर से जो चीज अगर सस्ती आने लगेगी, मान लीजिए कि हमारे यहां का दूध 50 रुपए लीटर बिक रहा है और बाहर का आया हुआ दूध यहां 40 रुपए लीटर बिकने लगे, तो आप कौन सा दूध खरीदेंगे? क्या ऑस्ट्रेलिया के दूध को इसलिए किनारे कर देंगे कि नहीं हम तो स्वदेशी हैं और अपने ही देश का दूध खरीदेंगे? जबकि वहां का दूध अच्छा आ रहा है, शुद्ध आ रहा है, प्योर आ रहा है, सस्ता भी आ रहा है। व्यावहारिक अर्थशास्त्र पर जाइए, है ना, राष्ट्रवादी अर्थशास्त्र पर नहीं कि नहीं जो हमारा अपना देश का दूध है तो हम ये खरीदेंगे, वो चीजें ज्यादा काम नहीं आती। कुछ लोगों तक तो काम आ सकती हैं, लेकिन अब जब वैश्वीकरण हो गया तो ज्यादा दिन तक इस तरह की भावनाएं टिकी नहीं रहेंगी। तो जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको इस रूप में इसे पढ़ना चाहिए ताकि फिर आप उसका सही रूप में उपयोग कर सकें। इसी के साथ जुड़ी हुई एक और बात है, अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की हुई होगी तो याद करने की कोशिश कीजिए, दोहा वार्ता। ये दोहा वार्ता क्या है? दोहा में जो एक सम्मेलन हुआ था उसमें यही बात हो रही थी कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो लगातार भारत और इस तरह के विकासशील देशों पर ये दबाव डाल रहे हैं कि नहीं आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन कीजिए, हम वहां निर्यात करेंगे, आप अपने यहां सब्सिडी कम कीजिए ताकि आपका जो अनाज का उत्पादन है और ये डेयरी उत्पादन है ये महंगे हो जाए। जब ये महंगे हो जाएंगे तो बड़े आराम से अपने यहां का जो उत्पाद है वो भारत के बाजार में भेज सकेंगे। और भारत सरकार इसका जबरदस्त रूप से विरोध कर रही है और इस विरोध में भारत को दूसरे विकासशील देशों का समर्थन मिल रहा है। इसको कहते हैं मथना, विचार करना। विचार करने का मतलब यह नहीं कि केवल जो आपने आइटम पढ़ा है उसे दो चार बार और पढ़ लीजिए और विचार हो गया, नहीं, उसमें से थ्रेड निकालने की कोशिश कीजिए तो आप देखें कि आपने एक साथ कितनी चीजें रिवाइज कर ली। जब आपका दिमाग इस तरीके से दौड़ना शुरू करता है दोस्तों, तब जाकर के जब आंसर राइटिंग की बात आती है वो आपको पॉइंट्स प्रोवाइड करता है कि हाँ ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए। आपने देखा अभी छोटी सी चीज के बारे में आप कितनी सारी चीजों को रिवाइज कर ले गए। अब आप इनको बकायदे लिंक कर सकते हैं, इस पर अगर आप मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो कहीं दोहा वार्ता को ले आएंगे, तो कहीं किसानों की आय को दुगना करना है उसको ले आएंगे, कहीं 7 करोड़ किसान परिवारों को ले आएंगे, कहीं कुछ ले आएंगे। आपका 150-200 शब्दों का उत्तर बन गया और ठोस उत्तर बन गया, तार्किक उत्तर बन गया जिसमें तथ्य है, कल्पना नहीं है। मैंने अभी जो बातें आप सबसे कही हैं इन पर आप सब थोड़ी गंभीरतापूर्वक विचार करें, प्लीज केवल सुनकर के छोड़ न दें, मुक्ति न पालें। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ऑफलाइन क्लासेज जो हमारी 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच होने वाली है उसके लिए विनय कुमार सिंह ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इनका गांव है दरियापुर, ये जिला सारण बिहार के हैं। तो विनय आपका स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। दोस्तों आज इतने सारे लोगों ने मेल लिखे हैं और अच्छे अच्छे मेल लिखे हैं, लेकिन लाइन सबकी एक ही है। कुछ ने विस्तार से लिखा है उन्हीं बातों को, कुछ लोगों ने शॉर्ट में लिख दिया है। अगर उनके नाम में पढ़ने लगूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, तो उसमें से केवल मैंने 3 नाम छांटे हैं जो थोड़े से हटकर मुझे मालूम पड़े। उसमें से एक है लिमांशी, दूसरे हैं शशि कुमार यादव दरभंगा बिहार से, और तीसरे हैं हर्ष। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ये जो 3 मित्र हैं इन तीनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही 2 दिनों की इजाजत मांगते हुए अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।